लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कनाडा में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को यह स्वीकार किया कि कलीसिया सरकार समर्थित आवासीय विद्यालयों के संचालन में अपनी भूमिका के लिए असफलता का बोझ महसूस करती है, जहां देशज संस्कृतियों को मिटाने की कोशिश की गई और जो दुर्व्यवहार के स्थान बन गए। कनाडा में अपनी सप्ताह भर की प्रेरितिक यात्रा के पांचवें दिन संत पापा फ्रांसिस ने केबेक सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेंट एन डी ब्यूप्रे के महागिरजाघर में ख्रीस्त्याग अर्पित किया तथा उन ज्वलंत मुद्दों पर विचार प्रकट किए जिनके बारे में कनाडा की तीर्थयात्री कलीसिया प्रश्न उठाती रही है। उन्होंने कहा, हमारे देशज मूल निवासी भाइयों और बहनों पर ढाए गए अत्याचारों में हम जख्मी मसीह के शरीर को देखते हैं। हमने भी गहरी निराशा का अनुभव किया है। हम भी असफलता का बोझ महसूस कर रहे हैं। यह सब क्यों हुआ? यीशु का अनुसरण करने वालों के समुदाय में यह कैसे हो सकता है? ये प्रश्न सदैव हमारे अंतःकरण को टटोलते रहेंगे। संत पापा ने कहा, संदेह और असफलता के ऐसे क्षणों में भागने और पछतावे में शरण लेने के प्रलोभन में हम पड़ सकते हैं। तथापि सुसमाचार हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु असफलता के क्षणों में हमारे साथ चलने के लिए तत्पर हैं तथा हमें घटनाओं को एक नई रोशनी में देखना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि विनाशकारी आग के बाद भी सेंट एन डी ब्यूप्रे के महागिरजाघर का निर्माण 3 बार किया गया, फिर भी क्षेत्र के वफादार लोग स्वप्न देखते रहे और फिर से साहस और रचनात्मकता के साथ निकल पड़े। उन्होंने कहा कि यदि हम यीशु को अपने जीवन और विश्वास का केंद्र मानेंगे, तब हम ईश्वर के साथ, दूसरों के साथ और स्वयं अपने साथ मेल मिलाप कर सकते हैं और हमारे समाजों के भीतर पुनर्मिलन और शांति के साधन बन सकते हैं। पर्यवेक्षकों का मानना है कि देशज मूल निवासियों के लिए निर्मित आवासीय स्कूलों में दुर्व्यवहार पर कैथोलिक कलीसिया की सामूहिक विफलता पर संत पापा द्वारा की गई ये अभी तक की सबसे मजबूत टिप्पणियां थी। संत पापा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कैथोलिक कलीसिया सरकार समर्थित शिक्षण संस्थानों में उसके मिशनरियों के सहयोग के लिए क्षमा याचना करती है। साथ ही आवासीय स्कूलों में जो हुआ उसके लिए उन्होंने सच्चाई की तलाश करने के बजाय संस्था के बचाव के खिलाफ भी चेतावनी दी है। सेंट एन डी ब्यूप्रे के महागिरजाघर में ख्रीस्त्याग समारोह से पूर्व दो देशज महिलाओं ने झंडे फहराकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष से मांग की कि वे औपचारिक रूप से 15वीं शताब्दी के उन शिलालेखों को रद्द करें जिन्हें खोज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और जिनमें पूर्व संत पापाओं ने नई दुनिया में देशज भूमि के अधिकरण को उचित ठहराया था। गुरुवार को ख्रिस्त्याग समारोह के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सेंट एंडी ड्यूप्रे महागिरजाघर को एक कलश और सोने की एक रोजरी माला भेंट स्वरूप अर्पित की। यह महागिरजाघर उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक प्राचीन कैथोलिक तीर्थस्थल है और उस स्थान पर स्थित है जहां 1658 ईस्वी में संत अन्ना की एक प्रतिमा के प्रतिस्थापन हेतु एक छोटा सा आराधनालय बनवाया गया था, जिसे फ्रांस के उपनिवेशवादी चमत्कारी मानते थे। सेंट एन डी ब्यूप्रे महागिरजाघर की क्षमता लगभग 1500 श्रद्धालुओं की है, जिनमें से 3/4 जगहों को आवासीय स्कूलों के उत्तरजीवियों के लिए सुरक्षित रखा गया था। शेष लोगों के लिए महागिरजाघर के बाहर विशाल टेलीविजन पर्दों का इंतजाम कर दिया गया था। वैटिकन ने सूचित किया कि गुरुवार को सेंट एन डी ब्यूप्रे महागिरजाघर में ख्रिस्त्याग समारोह के बाद संत पापा फ्रांसिस ने कैथोलिक मिशनरियों द्वारा संचालित वयोवृद्धों तथा एचआईवी और एड्स से ग्रस्त रोगियों के आश्रम की भेंट की तथा यहां निवास करने वाले आश्रम वासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया।
कनाडा की अपनी प्रेरितिक यात्रा के पांचवें दिन संत पापा ने ब्यूपेरे के राष्ट्रीय तीर्थ स्थल पर मिस्सा बलिदान अर्पित किया। उन्होंने एमाउस की राह में चल रहे शिष्यों के जीवन पर चिंतन करते हुए ख्रिस्तियों के जीवन में यीशु की उपस्थिति पर प्रकाश डाला।
En primer lugar está el sentimiento de fracaso que anida en el corazón de estos dos discípulos.
यीशु की मृत्यु के बाद दो शिष्यों के हृदय में असफलता का आतंक छाया हुआ था। वे एमाउस की राह में हताश और निराश अपने घरों की राह में थे। उनके सपने निराशा और दुख में तब्दील हो गए थे। संत पापा ने कहा कि ऐसी बातें हमारे जीवन और आध्यात्मिक यात्रा में भी घटित होती हैं। हम में से हर कोई कभी न कभी अपने दैनिक जीवन और संबंधों में असफलता, एक गलती या गिरने का अनुभव किया है। ऐसी परिस्थिति में हम जिन बातों में विश्वास करते थे या जिन पर हमारा समर्पण था, शून्य होने सा लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हम भागने के प्रलोभन से सचेत रहें, जिसे हम सुसमाचार में दो शिष्यों में पाते
हैं। Escapar del lugar donde ocurrieron los hechos.
पीछे लौटने की परीक्षा, उस स्थान को छोड़ने का प्रलोभन, ये सारी चीजें हमारे लिए शत्रु की ओर से आता है, जो हमें इस बात से भयभीत करता है कि हमारी असफलताएं अब अपरिवर्तनीय हैं। वह हमें दुख और उदासी से पंगु बनाना चाहता है। हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि और कुछ भी नहीं हो सकता है, नए सिरे से प्रयास करना व्यर्थ है। एमाउस की राह में यीशु धीरे से चेलों के पास आते और उनके उदासी भरे कदमों में कदम मिलाकर चलते हैं। वे उनके साथ और क्या करते हैं? वे उन्हें प्रोत्साहन के शब्द नहीं कहते, बल्कि धर्म ग्रंथ में कही गई अपनी रहस्यात्मक मृत्यु और पुनरुत्थान की बातों से उन्हें अवगत कराते हैं। वे उनके जीवन को और अपने ऊपर हुई घटनाओं को उन्हें समझने हेतु प्रकाशित करते हैं। इस भांति वे उनकी खुशी की यात्रा को नए शीरे से शुरू करते हैं, जहां वे असफलता से आशा में प्रवेश करते हैं। हमारी आंखें कैसे खुलेंगी? हमारे हृदय कैसे पुनः सुसमाचार से उद्दीप्त होंगे? संत पापा ने कहा,
Solo hay un camino, una sola vía. Es la vía de Jesús.
इसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग है और वह यीशु का मार्ग है। वे स्वयं यीशु हैं। हम उनसे मिलने जाएं, हम इस बात पर विश्वास करें कि वे हमारी यात्रा में हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा, हम यीशु ख्रिस्त को केंद्र बिंदु में रखें, हम उनके वचनों को अपने जीवन के केंद्र में रखें, क्योंकि यह हमारे जीवन की सारी चीजों को आलोकित करता और हमारी आंखों को खोलता है। संत पापा ने अपने प्रवचन के अंत में कहा, हम सभी शिष्यों की भांति यह कहें, हमारे साथ रह जाइए प्रभु, क्योंकि यदि आप हमारे साथ चलते तो असफलता हमारे लिए आशा और नए जीवन का कारण बनती है।
हथियारों की होड़ और प्रतिरोध की रणनीतियां शांति और सुरक्षा नहीं ला सकती। हमें यह पूछने की जरूरत नहीं है कि युद्धों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बल्कि उन्हें कैसे रोका जाए। जरूरत है रचनात्मक और दूरदर्शी नीतियों की, जो विपक्ष की श्रेणियों से आगे बढ़ने में सक्षम सिद्ध हो सकें। कनाडा में अपनी प्रायश्चित तीर्थ यात्रा के दौरान भी संत पापा फ्रांसिस विश्व के अन्य भूभागों की गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं रहे। अपनी प्रेरितिक यात्रा के पांचवें दिन गुरुवार को उन्होंने उक्त ट्वीट के माध्यम से यूक्रेन और विश्व के अन्य क्षेत्रों में जारी युद्धों की तर्कणा का खंडन किया तथा झगड़ों के समाधान हेतु रचनात्मक और दूरदर्शी नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी बीच कनाडा के केबेक शहर में गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने देश के कैथोलिक पुरोहितों, धर्म समाजियों, धर्म संघियों और गुरुकुल छात्रों के लिए सांध वंदना समारोह की अध्यक्षता की तथा इन्हें अपना संदेश दिया। इस अवसर पर केबेक के कैथोलिक धर्माधिपति तथा कनाडा के धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जेराल्ड लाक्रोआ ने उनके आदर में अभिवादन पत्र पढ़ा। कार्डिनल लाक्रोआ ने कहा, महामहिम संत पापा, मैं अपने सभी धर्माध्यक्षों की ओर से कनाडा में आपकी उपस्थिति के लिए प्रसन्नता और गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हमारे निमंत्रण पर आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया और आज केबेक में आपकी उपस्थिति हमारे लिए स्नेह का एक बहुत ही सराहनीय प्रमाण है। उन्होंने कहा, कनाडा में आपकी यह मुलाकात कैथोलिक कलीसिया के लिए हमारे देशज भाइयों और बहनों के साथ मेल मिलाप का हिस्सा है। आपकी कनाडा यात्रा हमारे देश के सभी निवासियों तक सुलह के इस मार्ग को बढ़ावा देती है। यह उपस्थिति अपने आप में पुनर्मिलन और सुलह का एक वादा है, एक साझा भूमि में भाईचारे सहित जीवन यापन की और एक साथ चलने की प्रतिबद्धता है। हमारे बीच आपका आगमन कनाडा के धर्माध्यक्षों और उनके सहयोगियों को सुसमाचार प्रचार और मेल मिलाप के निरंतर प्रयासों के लिए महान समर्थन का प्रतीक है।
कनाडा की अपनी प्रेरितिक यात्रा के पांचवें दिन संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार शाम को नोटर डेम डी क्यूबेक महागिरजाघर में कनाडा के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों, गुरुकुल के छात्रों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं के साथ संध्या प्रार्थना की अध्यक्षता की। अपने प्रवचन के दौरान संत पापा ने महागिरजाघर में बैठक के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसके पहले धर्माध्यक्ष संत फ्रांसिस डी लावल ने 1663 में सेमिनरी खोला और पुरोहितों के प्रशिक्षण हेतु खुद को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि संध्या प्रार्थना के लिए निर्धारित पाठ चरवाहों के बारे में बातें करता है। संत पेत्रुस ने उन्हें स्वेच्छा से ईश्वर के झुंड की देखभाल करने का आग्रह किया और इसलिए कलीसिया के पुरोहितों को झुंड की देखभाल करने में उसी उदारता को दिखाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि सभी के लिए यीशु की चिंता और प्रत्येक के घावों के लिए उसकी करुणा प्रकट हो। संत पापा ने कहा, चरवाहों को अपने झुंड की देखभाल भक्ति और कोमल प्रेम के साथ करना चाहिए, जैसा कि संत पेत्रुस आग्रह करते हैं। अपने झुंड का मार्गदर्शन करें, इसे भटकने न दें, क्योंकि हम मसीह के प्रतीक हैं। धर्माध्यक्षों को यह एक कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि पेशेवर धार्मिक कर्मियों या धर्म पदाधिकारियों की तरह एक चरवाहे के दिल से स्वेच्छापूर्वक करनी चाहिए। संत पापा ने कहा कि धर्माध्यक्ष भी मसीह के दयालु प्रेम से प्रवृत्त हैं और ईश्वर की निकटता को महसूस करते हैं। उन्होंने पुष्टि की कि यह सेवा के आनंद का स्रोत और विश्वास के सभी आनंद से ऊपर है। संत पापा ने अफसोस जताया कि धर्म निरपेक्षता ने समकालीन पुरुषों और महिलाओं के जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया है, जो ईश्वर को पृष्ठभूमि में ले जाते हैं। परिवेश की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए संत पापा फ्रांसिस ने निराशावाद, तुरंत नकारात्मक निर्णय लेने या व्यर्थ पुरानी यादों में जाने के प्रति सावधान किया। संत पापा ने दुनिया में दो संभावित दृष्टिकोण पर टिप्पणी की, नकारात्मक दृष्टिकोण और विवेकात्मक दृष्टिकोण। संत पापा ने कहा, नकारात्मक दृष्टिकोण अक्सर ऐसे विश्वास से पैदा होता है जो हमले के तहत महसूस करता है और इसे कवच के रूप में सोचता है। यह दृष्टिकोण शिकायत करता है कि दुनिया बुराई है, पाप राज्य करता है और खुद धर्म युद्ध की आत्मा में ढालने का जोखिम उठाता है। संत पापा इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं क्योंकि यह क्रिस्तिया नहीं और ईश्वर का मार्ग नहीं है। वे जोर देते हुए कहते हैं कि ईश्वर सांसारिकता से घृणा करते हैं और दुनिया के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ऐतिहासिक परिस्थितियों में खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आए ताकि ईश्वर के राज्य के बीज को उन स्थानों पर विकसित किया जा सके जहां अंधकार की जीत होती है। प्रार्थना और प्रेरिताई सेवा को आकार देने वाले तीन चुनौतियों का संकेत करते हुए संत पापा ने कहा कि पहला, लोग यीशु के बारे में जाने और धर्म निरपेक्षता एवं उदासीनता द्वारा बनाए गए आध्यात्मिक रेगिस्तान के बीच प्रारंभिक उद्घोषणा की ओर लौटें, कि हमें उन लोगों के लिए सुसमाचार की घोषणा करने के नए तरीके खोजने होंगे जिन्होंने अभी तक मसीह को जान नहीं पाया है। संत पापा ने कहा, दूसरी चुनौती गवाही है। संत पापा ने नाबालिगों और कमजोर लोगों के यौन शोषण के घोटालों की भी बात की। संत पापा ने कहा, आपके साथ मैं एक बार फिर सभी पीड़ितों से क्षमा मांगना चाहूंगा।
El dolor y la vergüenza que experimentamos debe ser ocasión de conversión. Nunca más.
हम जो दर्द और शर्म महसूस करते हैं वह परिवर्तन का अवसर बने, यह घटना फिर कभी ना हो। क्रिस्तीय समुदाय खुद को इस विचार से संक्रमित होने की अनुमति नहीं दे सकता कि एक संस्कृति दूसरों से श्रेष्ठ है। तीसरी चुनौती है भाईचारा। कलीसिया को सुसमाचार के लिए एक विश्वसनीय साक्ष्य बनना है।
La iglesia está llamada a encarnar este amor sin fronteras para construir el sueño que Dios tiene para la humanidad.
कलीसिया बिना सीमाओं के इस प्रेम को मूर्त रूप देने के लिए बुलाई गई है ताकि उस सपने को साकार किया जा सके जो ईश्वर ने मानवता के लिए रखा है। हम सभी भाई और बहने हैं।
केबेक के नोत्रदाम दे केबेक महागिरजाघर का निर्माण 1647 ईस्वी में किया गया था तथा इसे शांति की रानी माँ मरियम को समर्पित कर नोत्र दाम दे ला पाक्स नाम दिया गया था। पत्थरों से निर्मित शहर का ये सबसे पहला कैथलिक गिरजाघर था जिसके निर्माण के लगभग 200 वर्षों बाद संत पापा पियूस 11वें ने इसे तीर्थयात्रियों की महत्वपूर्ण संख्या के मद्देनजर बेजिलिका अर्थात महागिरजाघर घोषित किया था। ब्रिटिश घेराबंदी के दौरान 1759 में गिरजाघर पर बमबारी कर इसे आग के हवाले कर दिया गया था और फिर मूल योजनाओं के अनुसार इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। शनई शनई दशकों के अंतराल में इसके विभिन्न भागों का निर्माण किया गया तथा सजावटी घटकों को जोड़ा गया। आग में भस्म होने के बाद पुरानी योजनाओं के अनुसार एक बार फिर 1922 में इसका निर्माण कराया गया था। सन 1984 में संत जॉन पॉल द्वितीय ने अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान केबेक के कैथलिक समुदाय के लोगों के साथ विश्वास की भावना को साझा करते हुए महागिरजाघर में श्रद्धार्पण किया था। नोत्र दाम दे केबेक महागिरजाघर प्राचीन केबेक के केंद्र में स्थित है तथा इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। शुक्रवार को कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र के नुनावुत में संत पापा फ्रांसिस की यात्रा वैश्विक जलवायु परिवर्तन की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित कराएगी जिसमें समुद्री बर्फ तेजी से गायब हो रही है और परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है। शनिवार को कैथलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु संत पापा फ्रांसिस कनाडा में अपनी एक साप्ताहिक यात्रा के उपरांत पुनः रोम लौट रहे हैं।
और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगी। नमस्कार।